नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर एचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट,
यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।